न्यू साउथ वेल्स में कोरोना मामलों के नियंत्रण में आने के बाद 8 नवंबर से होगी प्रतिबंधों में और ढील। विक्टोरिया में हफ्तों बाद प्रतिदिन स्थानीय कोरोना मामलों की संख्या पहुंची 1000 के नीचे और जॉस बटलर के शतक की मदद से इंग्लैंड की श्रीलंका पर आसान जीत। अब खबरें विस्तार से। कोरोना मामलों के नियंत्रण में आते ही न्यू साउथ वेल्स ने राज्य को खोलने की आगे की रूपरेखा की भी घोषणा कर दी है। राज्य में आने वाले दिनों में प्रतिबंधों में कुछ बदलाव किया जाएगा। अगले सोमवार यानी कि 8 नवंबर से पूर्ण टीकाकृत लोग अधिक आज़ादी का मजा ले पाएंगे। नियमों में बदलाव के तहत अब इंडोर स्विमिंग पूल खुल जाएंगे, मेहमानों के घर पर आने की सीमा को हटा दिया जाएगा, साथ ही स्टेडियमों की क्षमता 100% तक बढ़ जाएगी। हालांकि 15 दिसंबर तक इंडोर स्थानों पर मास्क पहनना अभी भी अनिवार्य रहेगा। न्यू साउथ वेल्स की मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कैरी चैंट का कहना है कि नई स्वतंत्रता के बावजूद लोगों को कोविड सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए, साथ ही लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत है।
It was great to see people out and about and great to see those international arrivals and those reunited families. However, it is critical that as we try to go through this transition phase, we need to retain those COVID safe practices. So as the Premier indicated, we have to continue to get tested. Even if you're fully vaccinated, you need to get tested. You need to stay home. Those small steps can really help us keep the virus transmission in the community suppressed.
बढ़ते टीकाकरण के साथ ऑस्ट्रेलिया के लगभग हर क्षेत्र में कोरोना मामलों को लेकर स्थिति बेहतर होती दिख रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 नए स्थानीय मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में प्रतिदिन आने वाले मामलों का औसत भी घट रहा है। कैनबरा के अस्पतालों में कोविड 19 मरीजों की संख्या 8 से घटकर 7 हो गई है। हालांकि गहन देखभाल में इलाज करवाने वाले रोगियों की संख्या में 3 से 4 की वृद्धि हुई है। बढ़ती टीकाकरण दर का असर न्यू साउथ वेल्स के साथ साथ विक्टोरिया पर भी दिख रहा है। राज्य तेजी से पूर्ण टीकाकरण की तरफ बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटों में हफ्तों बाद 1000 से कम स्थानीय कोरोना मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार राज्य में 48,000 कोरोना परीक्षणों के बाद 986 स्थानीय कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि घातक वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 1133 को पार कर गया है और कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 को पार कर गई है। विक्टोरिया के विपक्ष के नेता से जल्द ही टिम स्मिथ के राजनीतिक भविष्य की घोषणा करने की उम्मीद है, जिन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया था और उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। टिम स्मिथ ने रविवार को शैडो कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया और दोस्तों के साथ डिनर से घर जाने के अपने फैसले को अपनी भूल बताया।
आई थिंक ही इज वेरी रिमोर्सफुल, आई थिंक ही इज एक्सीडिंगली रिमोर्सफुल, यू नो दिस इज पोटेंशियली कॉस्ट हिम हिज करियर एंड यू वुड एक्सपेक्ट एनीवन इन दैट पोजीशन टू बी नॉट जस्ट रिमोर्सफुल बट सर्टेनली वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैज अकर्ड।
अब खबरें भारत से। भारत में त्यौहार के दिनों के आते ही सरकार अधिक चौकस हो गई है। दिवाली के त्यौहार पर अक्सर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं और ऐसे में जान माल का भी नुकसान होना संभव रहता है। मौके की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली सरकार ने दिवाली पर लगभग 2800 अग्निशामकों को ड्यूटी पर रहने के लिए कहा है। इस विषय पर दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने जानकारी दी।
ये देखिए, इस बार भी हमने बहुत व्यापक तैयारी की है। हम इस बात को मतलब वो नहीं कर रहे हैं कि पटाखे नहीं चलेंगे तो आग कम लगेगी, क्योंकि पिछली बार भी जो थे पटाखे नहीं बजे थे, पर हमें करीब 237 कॉल 6 घंटे के अंदर मिली थी। करीब करीब 2800 आदमी जो हमने ड्यूटी पे रहे हमारे तैनात रहेंगे। 64 हमारे पास फायर स्टेशन ऑलरेडी हैं और हमने 30 फायर स्टेशन जो है ना छोटे छोटे वो बनाए हैं, टूटी चौक, लाजपत नगर एरिया, ऐसे जो कंजस्टेड एरिया हैं और जहाँ पे पिछले डेटा को एनालाइज करके देखे जाते हैं वहाँ से कॉल आती है, और क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है तो इसलिए हमने 30 जो है छोटे, इनको हम फायर पोस्ट कहते हैं, वो बनाई हैं। यहाँ पे हमारी जो गाड़ियाँ और आदमी जो है 5 बजे करीब पहुँच जाएंगे और रात में 12 बजे तक रहेंगे, जो कि मैक्सिमम पीक आवर है। सबसे ज़्यादा कॉल इसी में मिलती है, उसके बाद भी मिलती है, पर इसमें सबसे ज़्यादा मिलती है।
सर्दी के आते ही दिल्ली और उसके आसपास के इलाके अलर्ट पर आ जाते हैं। बढ़ते कोहरे और प्रदूषण से AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खतरे की तरफ बढ़ने लगता है। फिलहाल दिल्ली का प्रदूषण स्तर भी बढ़ने लगा है और लोग आने वाले दिनों को लेकर परेशान दिख रहे हैं।
वो बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, लाइक अस्थमा हो सकता है, ब्रीदिंग ऑल द ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, हार्ट के ऊपर असर है, आपका डायबिटीज अगर है तो उसके ऊपर भी असर अल्टीमेटली आता है। तो ये एक दिस इज अ बिग हेल्थ हैजार्ड।
ऐसा है कि एयर पोल्यूशन जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ स्पान के लिए, नॉट बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी और जवानों के लिए भी और जो भी सारे लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही हानिकारक चीज़ है। इसका जो कारण है वो तो बहुत लोगों ने ऑलरेडी कहा है कि भाई जो है व्हीकुलर पोल्यूशन इज़ वन फैक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज़ अनदर, और जो बर्निंग वगैरह करते हैं वो है, और तीसरा है कि एनवायरनमेंट है जो कि पोल्यूशन को हटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। पोल्यूशन को बढ़ाता है अगर हम अपना एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रखेंगे।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 56.37 रुपए और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 75 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच खेले गए T20 विश्व कप के लीग मुकाबले में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 26 रन से हरा दिया। शारजा में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज जॉस बटलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने T20 करियर का पहला शतक जमाया। आपको बता दें कि बटलर ने महज 67 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और वो नाबाद रहे। जवाब में उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके ओपनर जल्दी आउट हो गए। हालांकि श्रीलंका के मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने हिम्मत दिखाते हुए बहुत संघर्ष किया और एक वक्त मैच में वापसी भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद 19 ओवर की समाप्ति तक टीम ऑल आउट हो गई और 26 रन से मुकाबला हार गई। न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारत की T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो गई है। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए न सिर्फ आगे के सारे मुकाबले बड़े अंतर के साथ जीतने होंगे, बल्कि उसे उम्मीद भी करनी होगी कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड भी अपने मैच हारे। ऐसे में भारतीय टीम पर इस वक्त जबरदस्त दबाव है। भारत का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया समय अनुसार 4 नवंबर देर रात अफगानिस्तान के खिलाफ खेला जाएगा और भारत के लिए ये करो या मरो की स्थिति रहेगी। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां आंशिक बादल रहने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल हल्की बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहां कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 8 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल आसमान में आंशिक बादल रहने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको बता देते हैं www.sbs.com.au/hindi।